Hare Hare
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe. Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Gauranitaya Jaya Gauranitaya Jaya Gauranitaya Jaya Gauranitaya. Jaya Vittal Rakumai Jaya Vittal Rakumai Jaya Vittal Rakumai Jaya Vittal Rakumai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol.
Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakacharya Stotra Sat His Divine Grace Abhay Charanaravind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय. श्री श्री गौर निताय की जय. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री श्री विठल रुक्मिणी देवी की जय। श्री देव शायनी आषाढ़ी एकादशी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम नौवां स्कंद पंद्रहवां अध्याय श्लोक संख्या 15। दृप्तं क्षत्रं भुवो भारम् अब्रह्मण्यम् अनीनशत् रजस्तमो वृतमहन् फल्गुन्यपि कृतेमहसि। दृप्तं क्षत्रं भुवो भारम् अब्रह्मण्यम् अनीनशत् रजस्तमो वृतं महन् फल्गुन्यपि कृतेमहसि। दृप्तं क्षत्रं भुवो भारम् अब्रह्मण्यम् अनीनशत् रजस्तमो वृतं महन् फल्गुन्यपि कृतेमहसि। दो प्रभु जी दो माता जी बोलिए। हारम क्षत्रं भुवो भारम् अब्रह्मण्यम् अनीनशत् रजस्तमो वृतम् अहन् फल्गुन्यपि कृतेमहसि। दृप्तं क्षत्रं भुवो भारम् अब्रह्मण्यम् अनीनशत् फल्गुन्यपि कृतेमहसि। दृप्तं अत्यंत गर्वित, क्षत्रम क्षत्रियों को, भुवः पृथ्वी को, पृथ्वी के, भारम भार को, अब्रह्मण्यम पापी, ब्राह्मणों के बनाए धार्मिक नियमों की न परवाह की परवाह न करने वाले अनीन अशत निकाल दिया या विनष्ट कर दिया। रजह तमह रजो तथा तमो गुणों से वृतम ढके हुए अहन मार डाला फलगुनी बहुत बड़े नहीं अपि यद्यपि कृते किया गया अंहसी अपराध। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद: जब राजवंश रजो तथा तमोगुणों के कारण अत्यधिक गर्वित होकर अधार्मिक बन गया और ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों की परवाह न करने लगा तो परशुराम ने उन सबको मार डाला। यद्यपि उनके अपराध बहुत बड़े न थे किंतु धरती का भार कम करने के लिए उन्होंने उन्हें मार डाला। तात्पर्य का केवल पहला परिच्छेद पढ़ूंगा क्योंकि तात्पर्य बहुत लंबा है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा: क्षत्रियों या शासक वर्ग को महान ब्राह्मणों तथा साधु पुरुषों द्वारा बनाए गए विधि विधानों के अनुसार संसार पर शासन करना चाहिए। जो ही शासक वर्ग धार्मिक नियमों की अवहेलना करने लगता है त्यों ही वह पृथ्वी के लिए भार बन जाता है। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, रजस्तमो वृतम भारम अब्रह्मण्यम। जब शासक वर्ग रजो तथा तमो गुणों से प्रभावित हो जाता है तो वह विश्व के लिए भार बन जाता है और तब उसे महिति शक्ति द्वारा विनष्ट किया जाना चाहिए। हम आधुनिक इतिहास में स्पष्ट देखते हैं कि राजतंत्रों को विभिन्न क्रांतियों के ने विनष्ट किया है, किंतु दुर्भाग्यवश राजतंत्रों के विनाश के बाद तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के व्यक्तियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया है। यद्यपि राजतंत्रों को रजो तथा तमो गुणों ने परास्त कर दिया है और विश्व से उनका लोप हो गया है, किंतु विश्व के वासी अब भी दुखी हैं, क्योंकि यद्यपि इन राजाओं के गुण तमोगुण के कारण क्षीण हो गए थे, इनका स्थान व्यापारी तथा श्रमिक वर्ग के लोगों ने ले लिया है जो और भी गिरे हुए हैं। जब सरकार का मार्गदर्शन ब्राह्मण या ईश्वर भक्त लोग करते हैं तभी लोग वास्तव में सुखी रह सकते हैं। अतएव प्राचीन काल में जब शासक वर्ग रजो तथा तमोगुणों के स्तर पर पतित हो गया तो परशुराम जैसे क्षत्रिय तुल्य ब्राह्मण ने उनका 21 बार वध किया। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आज देवशयनी एकादशी है, जिसे आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। सौभाग्य से रविवार के दिन ही ये पड़ गया है। आषाढ़ी एकादशी इसलिए कहा जाता है इस दिन को, क्योंकि ये एकादशी आषाढ़ महीने में आती है, शुक्ल पक्ष में। इसे देवशायनी या शायनी एकादशी भी कही जाती है, क्योंकि ऐसे शास्त्रों में बताया गया है कि इस तिथि पर भगवान श्री विष्णु, जो कि क्षीर सागर में शयन कर रहे होते हैं, वो योग निद्रा में चले जाते हैं, अर्थात हमारी भाषा में कहा जाए तो वो सो जाते हैं। परंतु भगवान की निद्रा हमारे नींद के समान नहीं है। जब हम सो जाते हैं तो पूरी तरह से अज्ञान में पड़ जाते हैं। हमें पता नहीं होता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ पे लेटे हुए हैं और हमारे आसपास में क्या चल रहा है। केवल जब जागृत अवस्था में आते हैं तब पता चलता है कि अरे मैं ये हूँ और मेरा ये सब काम है, मेरा ये परिवार है, घर है इत्यादि। इसलिए निद्रा की अवस्था में सब एक जैसे हो जाते हैं। राजा हो या रंक, मनुष्य हो या पशु, सब अज्ञान की अवस्था में होते हैं, क्योंकि ये निद्रा की अवस्था तमोगुण में होती है। परंतु भगवान की निद्रा अवस्था हमारी निद्रा अवस्था की तरह नहीं है। भगवान इन चेतनाओं के विभिन्न परिस्थितियों से परे रहते हैं सदैव। साधारण जगत में बद्ध जीवों के लिए ये जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और निद्रा की अवस्था, जिसको सुषुप्ति कहते हैं, इन तीन अवस्थाओं में से हम अलग अलग अवस्थाओं में भ्रमण करते रहते हैं। आशा करते हैं कि यहाँ प्रवचन के समय सब केवल पहले चेतना की अवस्था में ही रहेंगे, दूसरे और तीसरे अवस्था में नहीं जाएंगे, और जाना भी है तो अपने आप को खींच के ले आना है, या अपने पास बैठने वाले भक्त को सहायता करनी है जागृत अवस्था में रहने के लिए। और एक चौथी अवस्था रहती है, जिसको कि समाधि कहते हैं या तुरिया, जिसमें व्यक्ति अपने आध्यात्मिक स्तर पर स्थित होता है। आध्यात्मिक स्तर में स्थित होने वाले व्यक्ति को भी इन तीन अवस्थाओं में से जाना पड़ता है। वो भी जागृत अवस्था में रहता है, वो भी सोता है, सपने देखता है, जैसे शुद्ध भक्त भी ये करते हैं तीन चीजें। परंतु मूलतः उनकी चेतना तुरिया या समाधि में इसलिए कही जाती है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लिप्त रहते हैं, मग्न रहते हैं। तो भगवान विष्णु सदैव इन तीन गुणों के परे होने के कारण इनका इन जागृत, स्वप्न और निद्रा की अवस्था से कुछ लेना देना नहीं है। वो सदैव अपने अति समाधि अवस्था में रहते हैं, अर्थात वो अपनी चेतना में, जो कि विशुद्ध सत्व है, पूरी तरह से शुद्ध है, ऐसी अवस्था में रहते हैं। फिर भी क्योंकि वो भौतिक सृष्टि में प्रकट हुए हैं, तो वो भी मनुष्यों की तरह ऐसे लीला करते हैं। हमारी लीला नहीं है सोना, भगवान की लीला है। तो भगवान ऐसी लीला करते हैं और इस दिन पर देवशायनी एकादशी पे वो योग निद्रा में चले जाते हैं। लेटे लेटे अपने अनंत शेष शैया के ऊपर लेटे हुए वो सो जाते हैं। सोते हुए भी उनकी चेतना चलती है, वो सर्वज्ञ रहते हैं। हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है निद्रा के समय, भगवान का ज्ञान नष्ट नहीं होता है। और पृथ्वी लोक के काल के तुलना के मापदंड के अनुसार भगवान 4 महीने योग निद्रा में रहते हैं, सो जाते हैं। और इस 4 महीने के अवधि को क्या कहते हैं? चातुर्मास्य कहते हैं। और फिर कार्तिक में, फिर उत्थान एकादशी में उनका उत्थान होता है, वो उठ जाते हैं, नींद से जाग जाते हैं। तो आज वो दिन है। वैसे इसका अपना महात्म्य है, विस्तार में चर्चा नहीं करेंगे, सिवाय अब इतना कहना कि खास करके महाराष्ट्र कर्नाटक में इसका महत्व ये रहता है कि बड़ी संख्या में भगवान विष्णु के भक्त, खास करके जो भगवान विट्ठल रुक्मिणी के भक्त हैं, वो वारी या एक यात्रा निकालते हैं जिसको दिंडी कहते हैं। आप सब भली भांति जानते हैं इन चीज़ों को। और देहू से, आलंदी से और विभिन्न स्थानों से वो अपने अपने दिंडी में निकल पड़ते हैं और अनेक दिनों तक धूप हो या बारिश चलते 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 वो फिर पहुंच जाते हैं पंढरपुर। फिर वहाँ पे भगवान विट्ठल के दर्शन करते हैं, रुक्मिणी के दर्शन करते हैं, और बहुत बड़ा उत्सव आज के दिन वहाँ पर होता है। और इतनी भीड़ होती है कि वहाँ दर्शन लेने के लिए बहुत लंबी कतार होती है। तो इसलिए आषाढ़ी एकादशी का महोत्सव ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और बहुत ऐसे श्रद्धालु भक्त वहाँ पर पहुँच जाते हैं पंढरपुर में। मुझे पता नहीं, यहाँ से भी कोई भक्त शायद बेलगाम से गए होंगे आषाढ़ी एकादशी के लिए, हर वर्ष निकलते हैं। देहू से तुकाराम महाराज के भक्त निकलते हैं जब से उनके पुत्र ने ये प्रथा प्रारंभ की थी, और आलंदी से ज्ञानेश्वर महाराज के जो अनुयायी हैं वो निकलते हैं, और जगह जगह से जो भी भगवान विट्ठल के भक्त हैं वो चलते हैं। और आज हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर ढंग से गोकुल आनंद को सजाया हुआ है, विट्ठल देव का रूप धारण किया है, कि इन्होंने श्रृंगार किया है कालकंठ प्रभु में। हैं क्या आज यहाँ कालकंठ प्रभु है? नहीं। तो वैसे भी शरीर की कांति वैसे ही है सांवले रंग की, जैसे कि विट्ठल की है, विट्ठल देव की है। और क्या देख रहे हैं आप? हाँ, बड़ी आंखें बड़ी हैं, ठीक है। और पीताम्बर तो है ही, और कमर में हाथ जैसे विट्ठल रुक्मिणी विट्ठल खड़े हैं ना। विट्ठल नाम कैसे आया? वीट के ऊपर खड़े हो गए विट्ठल, कमर पे हाथ धारण किए हुए। तो यहां भी वासुदेव रूप में 4 भुजाएं हैं, कमर पे हाथ रखे हुए हैं। तो विट्ठल रुक्मिणी राधा गोकुलानंद आज यहाँ विट्ठल रुक्मिणी के रूप में विराजमान है। तो जिन भक्तों ने आज यहाँ श्रृंगार किया, कालकंठ प्रभु और अन्य भक्त, आप सबको हार्दिक धन्यवाद। आप सब ने, आपने हम सबको आज विट्ठल रुक्मिणी का स्मरण करवा दिया और दर्शन भी करवा दिया। हाँ, और जगन्नाथ का भी सुनावेश है आज। हाँ, सुनावेश नहीं, और जगन्नाथ बलदेव भी अभी अपने अयुध से तैयार है। बलदेव भी अपने हल आदि को धारण किए हुए, हल और गदा साथ में धारण किए हुए। तो आज बहुत सुंदर दर्शन है यहाँ पर। तो खैर, प्रसंग पिछले रविवार से भगवान के और एक रूप का है जो परशुराम जी हैं। पिछले रविवार को हम चर्चा कर रहे थे कि परशुराम जी शक्त्यावेश अवतार हैं, भगवान के, और वो प्रकट हुए थे दुष्ट लोगों का दमन करने के लिए। भगवान के प्रत्येक शक्त्यावेश अवतार को भगवान को विशेष शक्ति प्रदान करते हैं, चाहे वो ज्ञान की शक्ति हो, भक्ति की शक्ति हो, प्रजा पालन की शक्ति हो। उसी प्रकार से परशुराम जी को भगवान ने अर्पण किया ये दुष्टों को दमन करने की शक्ति। तो उन्होंने कई दुष्ट लोगों की हत्या की और अन्यों को भगा दिया। कई लोग, और विशेष रूप से जैसे कि आज के श्लोक में हमने पढ़ा, जो क्षत्रिय धर्म के पथ पे नहीं चल रहे थे, शास्त्रों के नियमों के अनुसार और विशेष रूप से ब्राह्मणों ने बनाए हुए जो भी विधि विधान हैं उनके अनुसार नहीं चल रहे थे, जो श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के अनुसार ब्रह्मोज्झित पथस, ब्रह्म उज्झित, जिन्होंने ब्रह्म या भगवत साक्षात्कार के मार्ग को उज्झित त्याग दिया था, ठुकरा दिया था, तो ऐसे पथ पे चलने वाले लोगों का दमन करने के लिए परशुराम जी आए थे और अपने अस्त्र शस्त्र लेकर उन्होंने विध्वंस कर दिया क्षत्रिय समाज में उस समय। जैसे कि हमने श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पढ़ा कि जहां शासन करने वाले लोग ठीक नहीं होते हैं तो लोग असंतुष्ट हो जाते हैं, और इतिहास में ये देखा गया है कि क्रांतियां होती हैं, विद्रोह होते हैं, और फिर अभी बैठे वाले जो राजा है या मुख्यमंत्री हैं या राष्ट्रपति है उनको पद से निकाला जाता है। अब ये खबरों में है, अभी श्रीलंका में यही चल रहा है, क्योंकि उन्होंने ठीक से शासन नहीं किया तो प्रजा अभी उठ पड़ी है, विद्रोह कर रहे हैं और राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को हटा दिया है वहां से। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे क्रांतियां जब होती हैं तो यदि कोई अच्छे व्यक्ति आके राज सिंहासन पर बैठ जाए या गद्दी पर बैठ जाए तो फिर प्रजा का भला हो सकता है, परंतु जो लोग विद्रोह करते हैं उनकी कोई योग्यता अच्छी नहीं होती, तो जिनको वो राजगद्दी से हटा देते हैं उनसे भी अधिक गिरे हुए ये लोग रहते हैं जो आके वहां पर बैठ जाएंगे। इसलिए अंततः किसी का भला नहीं होता है, इसलिए मनुष्य समाज के इतिहास में ऐसे ही होता है, एक के बाद एक विद्रोह होते हैं, क्रांतियां होती हैं, परंतु कुछ लाभ नहीं होता। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यद्यपि ये संसार का एक नियम है, परंतु जब तक कृष्ण भावना भावित लोग राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, जो कि वास्तव में जो कृष्ण भक्त हैं उनसे सलाह या आदेश प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक मनुष्य समाज की दशा ऐसी ही होगी, दुर्दशा होगी। तो अब हम श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 15वें अध्याय से परशुराम जी के जन्म के पीछे क्या पृष्ठभूमि है या क्या इतिहास है वो हम देखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, क्षत्रियों के दो वंश हैं प्रमुख, सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो चंद्रवंश या सोमवंश में एक राजा हुए जिनका नाम था गाधी। गाधी के एक पुत्र थे, वैसे अन्य पुत्र भी थे, परंतु प्रमुख जो पुत्र थे वो थे विश्वामित्र, जो कि आगे चल के विश्वामित्र मुनि बन गए। पहले क्षत्रिय थे, राजा थे, भयंकर क्षत्रिय थे, बहुत प्रभावशाली शक्तिशाली थे, परंतु बाद में वो ब्रह्म ऋषि बन गए। ये एक अपनी अलग सी कहानी है, कथा है। और महाराज गधी के और एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्यवती। तो ये सत्यवती महाभारत की सत्यवती से भिन्न है। वो कौन थी सत्यवती? व्यास देव की माता थी, राजा शांतनु की पत्नी थी, राजा शांतनु भीष्म देव के पिता थे, तो वो महारानी सत्यवती से अलग है ये सत्यवती। तो ये सत्यवती विश्वामित्र मुनि की बहन थी, महाराज गाधी की पुत्री थी। तो इनके विवाह के बारे में यहाँ पर बताया जाए, और सत्यवती का विवाह ऋचिक मुनि से हुआ, उनके पुत्र हुए जमदग्नि, जमदग्नि ने रेणुका देवी से विवाह किया और उनके कई पुत्र हुए, सबसे छोटे पुत्र थे परशुराम। अब ये विवाह सत्यवती और ऋचिक मुनि का कैसे हुआ, इसके लिए श्रीमद् भागवत में क्या कहा गया है, आइए ये हम सुनते हैं। तो ऋचिक मुनि ये महाराज गाधी के पास आए कि हम आपके बेटे सत्यवती के साथ विवाह करना चाहते हैं। तो राजा महाराज गाधी ने सोचा, अरे कहाँ मेरी राजकन्या राजकुमारी सत्यवती मेरी बेटी, और कहाँ ये मुनि तो वन में रहते हैं, और ये कैसे मेरी बेटी का देखभाल करेंगे, ये तो मेरी बेटी के लिए योग्य वर नहीं है, ऐसे मन में सोच रहे थे परंतु अपने वचनों में नहीं ला पाए इसको। तो उन्होंने सोचा कि मुझे ऐसे कोई एक शर्त रखनी चाहिए जिसका पालन शायद ये मुनि नहीं कर पाएंगे, फिर वो निराश होकर चले जाएंगे, फिर किसी योग्य वर को मैं ढूंढूंगा मेरी पुत्री के लिए। तो उन्होंने ऐसा एक शर्त रखा जो बड़ा विचित्र था। उन्होंने कहा कि आपको यदि मेरे पुत्री से विवाह करना है तो शर्त ये है कि आपको 1000 ऐसे घोड़े लाने चाहिए मेरे पास, जिनका रंग चंद्रमा के किरणों के समान सफेद है, सफेद बिल्कुल सफेद निष्कलंक, ऐसे 1000 घोड़े चाहिए। और इतना ही नहीं, ये हर एक घोड़े का एक कान, चाहे बायां कान हो दायां कान हो, वो काला होना चाहिए, ऐसे 1000 घोड़े आपको लाने हैं, तब मैं मेरी पुत्री का विवाह आपसे कर दूंगा। अब ऋचिक मुनि समझ गए कि इनका इरादा क्या है, वो देना ही नहीं चाहते थे, इसलिए इस तरह का शर्त रख लिया। परंतु ये ऋचिक मुनि भी कोई साधारण मुनि नहीं थे, तो वो चले गए वरुण देव के पास। वरुण देव के पास ऐसे घोड़े हैं और थे, तो ऋचिक मुनि को प्रसन्न करने के लिए वरुण देव ने ऐसे 1000 घोड़े दे दिए, बिल्कुल सफेद रंग निष्कलंक और एक कान काला। तो महाराज गाधी बड़े आश्चर्यचकित हो गए, उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, अब मैं वचनबद्ध हूं, अब तो मुझे देना ही चाहिए। तो अपने पुत्री का विवाह ऋचिक मुनि से उन्होंने कर दिया, तो विवाह तो हो गया। और अपने गृहस्थ जीवन में ऋचिक मुनि सत्यवती देवी के साथ रहने लगे। अब उन्होंने सोचा कि गृहस्थ आश्रम में आ गए, अब संतान की उत्पत्ति करनी है, तो उन्होंने यज्ञ में आहुति दे दी, और उन्होंने ये आहुति जो है अपने पत्नी सत्यवती को दी। परंतु सत्यवती की जो माता है वो भी आई ऋचिक मुनि के पास, ये जानकर कि ये बहुत प्रभावशाली ब्राह्मण मुनि है, कि मैं भी एक पुत्र चाहती हूं, तो मेरे लिए भी ऐसी कोई आहुति आप दे दीजिए, तो मेरे बेटे के लिए भी दे दीजिए, मेरे लिए भी दे दीजिए। तो ऋचिक मुनि ने कहा ठीक है, तो यज्ञ आदि करके जो आहुति दो कटोरी में लेके वो लाए, और अपने पत्नी को एक कटोरी दे दी कि आप ये ले लेना, और अपनी सास को भी दूसरी कटोरी दे दी कि आप ये ले लेना। अब ऋचिक मुनि अपने साधन करने के लिए चले गए, नदी के तट पे चले गए। उधर ऋचिक मुनि की सास ने, महाराज गाधी के पत्नी ने सोचा कि मानसिकता ऐसी होती है कि जो पुरुष होते हैं उनका थोड़ा झुकाव पत्नी की ओर ज्यादा होता है, सास की ओर कम होता है। इसलिए जो दो कटोरियां दी हैं उनमें से जो मेरी बेटी को दी है वो अच्छा रहेगा, मेरे कटोरे से ज्यादा। इसलिए उन्होंने जाके अपनी बेटी से कहा कि तुम्हें जो कटोरी मिली है वो मुझे दे दो और मेरी कटोरी तुम ले लो। तो बेटी ने कहा ठीक है, और दोनों ने कटोरी के अंदर जो भी था वायुद वो उसका सेवन कर लिया। जब ऋषिक मुनि वापस आ गए और उन्होंने सुना कि क्या हो गया, तो फिर उन्होंने उनको बड़ा दुख हुआ, वो क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने पत्नी से कहा कष्टम अकार्षी ही, तुमने बहुत गलत काम किया है। क्यों गलत काम किया है? घोरो दंड धर पुत्रो भ्राता ते ब्रह्म वित्तमः। मैं ब्राह्मण हूं, मेरा पुत्र भी ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण के गुण अंदर होने चाहिए, परंतु तुमने तुम्हारे मां के लिए दिया हुआ जो दिए हुए जो कटोरी के सामान जो सामग्री ले ली, इसलिए घोर दंड धर पुत्रो, तुम्हारा पुत्र जो है ब्राह्मण न होकर एक घोर क्षत्रिय होगा जो भयंकर कार्य करेगा। और वहां तुम्हारी माता उनका पुत्र कैसे होगा? भ्राता ते ब्रह्म वित्तमः, तुम्हारा जो भाई निकलेगा का जन्म होगा वो ब्रह्म वित्तमः, ब्रह्म ज्ञान में प्रवीण जो व्यक्ति है वैसा होगा, एक शांत ब्राह्मण होगा। अब वैसे जानबूझकर ऋषिक मुनि ने ये दो अलग अलग आहुतियां बनाई थी, तो स्वयं के पत्नी के लिए ऐसे आहुति जिससे कि एक ब्राह्मण लड़का उत्पन्न हो, और अपने सास के लिए ऐसे आहुति दे थी जिससे कि एक क्षत्रिय उत्पन्न हो। परंतु अब ये उलट पुलट हो गया, तो अब उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, एक ब्राह्मण तब योग्य माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, जबकि वो अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है, और जब वो आध्यात्मिक विज्ञान में बड़ा विद्वान होता है। और एक क्षत्रिय बड़ा योग्य तब माना जाता है जबकि वो गुनहगारों को उचित रूप से दंड देता है, सबकी रक्षा करता है। तो योग्यता अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह से नाप ली जाती है, सबके लिए एक तरह की योग्यता नहीं होती है। परंतु अब ये होने के कारण अब जहां एक ब्राह्मण पुत्र होना चाहिए था वहां एक घोर दंड धारण करने वाला व्यक्ति जन्म लेने वाला था, और जहां एक दंड धारण करने वाले बच्चे को जन्म लेना था वहां एक योग वित्तमह या ब्रह्म वित्तमह जन्म लेने वाला था। तो जब ये सुना सत्यवती देवी ने, तो वो घबरा गई कि मुझे ऐसा घोर क्षत्रिय पुत्र नहीं चाहिए। तो अपने पति को शांत किया, सांत्वना दी, फिर मां एवं भूः कि ऐसे न हो, ऐसे न हो, मुझे ऐसे पुत्र न मिले। तो फिर जमदग्नि तो फिर उन्होंने कहा, ऋषिक मुनि ने कहा कि ठीक है, अभी तुमने इस तरह से थोड़ा प्रायश्चित किया है, कुछ तो पछतावा कर रही हो, परंतु ये जो मैंने एक वरदान दिया है उसको पूरी तरह से मैं नकार नहीं सकता, थोड़ा परिवर्तन कर सकता हूँ। परिवर्तन क्या है कि जो घोर दंड दरह जो घोर क्षत्रिय होगा तुम्हारा पुत्र न होकर तुम्हारा पौत्र होगा, मतलब तुम्हारे पुत्र का पुत्र होगा, इतना मैं कर सकता हूं, इससे अधिक परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो फिर आगे चल के सत्यवती देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया, और उस पुत्र का नाम था जमदग्नि। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऋषिक मुनि वैसे बहुत क्रोधित हो गए थे, किंतु किसी न किसी तरह, क्योंकि सत्यवती देवी ने उनको शांत कर दिया, इसीलिए उन्होंने अपने वरदान को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया। तो उसके बाद सत्यवती देवी ने जमदग्नि नाम के पुत्र को जन्म दिया। यहां श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आगे चल के सत्यवती कौशिकी नदी बन गई। जब ऋचिक मुनि ने अपना प्राण त्याग दिया और ऊपरी लोकों में वह चले गए तो सत्यवती देवी भी उनके साथ चली गईं और फिर स्वर्गलोक से या ऊपरी लोकों से फिर वो यहां एक नदी के रूप में आईं। नदी का नाम था कौशिकी। अपभ्रंश होके आजकल इस नदी का नाम क्या हो गया है? कोसी, कोसी नदी। ये भी पवित्र नदी मानी जाती है जो एक उपनदी या सहायक नदी है गंगा जी के लिए। तो नेपाल से शुरू होकर बिहार में आती है, गंगा से मिलती है। आपको पता है कि जितने बड़ी बड़ी नदियां होती हैं जैसे गंगा है इत्यादि, उनको अनेक नदियां आके मिलती हैं जिनको उपनदी भी कहते हैं। तो गंगा जी के अनेक उपनदियां हैं, सहायक नदियां हैं, जिनमें से एक है ये कोसी नदी। तो ये कोसी नदी नेपाल से प्रारंभ होकर गंडकी वहां से प्रारंभ होकर उस स्थान से फिर बिहार में आती। बिहार में ये दुख की नदी मानी जाती है क्योंकि इतने बाढ़ हुए हैं और बहुत नुकसान हुआ है लोगों के लिए। तो खैर, अभी ये कोसी नदी के रूप में आज भी सत्यवती देवी बह रही हैं। तो ऐसे बताया जाता है कि यहां पर नहीं परंतु अन्य शास्त्रों में बताया जाता है कि राजा विश्वामित्र मुनि जो थे, जो सत्यवती के भाई थे, वो सत्यवती से बहुत आसक्त थे। तो अपने बहन के पास रहने के लिए वो कोसी नदी या कौशिकी नदी के पास में आकर तपस्या करते थे या ध्यान में बैठते थे। तो कौशिकी नाम की हुआ, विश्वामित्र मुनि का भी नाम कौशिक हुआ। ऐसे क्यों? क्योंकि उनके एक पूर्वज थे जिनका नाम था कुश। ये प्रभु राम के पुत्र कुश नहीं है, ये अलग कुश है। तो कुश के वंश में गाधी महाराज आए, गाधी महाराज के फिर ये पुत्र बने, इसलिए उनका नाम कौशिक है और उनकी बहन का नाम कौशिकी। इस प्रकार से सत्यवती और विश्वामित्र मुनि की बात कही गई है। तो आगे चल के जमदग्नि ऋषि इन्होंने रेणुका देवी से विवाह किया। अब जमदग्नि का स्वभाव ब्राह्मण का था, वो पूरी तरह से ब्राह्मण थे। अन्य स्थानों में बताया जाता है कि उनकी पत्नी रेणुका देवी ये क्षत्रिय परिवार से थी। तो खैर, जमदग्नि ने रेणुका से विवाह कर लिया और उनके अनेक पुत्र हुए। सबसे वरिष्ठ पुत्र का नाम था वसुमान और सबसे छोटे पुत्र थे परशुराम। उनका नाम था वास्तव में राम, परंतु आगे चल के नाम परशुराम हो गया क्योंकि उनका उनका जो एक आयुध है परशु, उससे उन्होंने सारे क्षत्रियों का वध किया, इसलिए उनका नाम बन गया परशुराम। जिस राम ने परशु का प्रयोग करके दुष्टों का विनाश कर दिया। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो बड़े विद्वान हैं वो इस परशुराम को वासुदेव के ही अवतार मानते हैं, जिन्होंने कि कार्तवीर अर्जुन अर्थात जो उस समय के क्षत्रिय थे उनका विनाश कर दिया। वासुदेव अंश अंशम, ऐसे यहां पे कहा गया है। वासुदेव अंशम कि वासुदेव के अंश है। दूसरे शब्दों में परशुराम जी ये भगवान के एक विशेष अवतार हमें मान लेना चाहिए। और 21 बार उन्होंने क्षत्रियों को मार डाला। और क्यों मार डाला? तब हम अब 15वें श्लोक में आते हैं, जिस श्लोक का पठन आज हमने किया कि जब राजवर्ग ये बहुत ही घमंडी हो गए, बहुत अभिमानी हो गए और उन्होंने ब्राह्मणों के बताए हुए रास्ते में चलना ठीक नहीं समझा, तो उस समय परशुराम ने उनको 21 बार मार डाला। फिर परीक्षित महाराज, जो कि सुखदेव महाराज से ये सारी कथा सुन रहे थे, उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा बड़ा अपराध था जो कि पृथ्वी के क्षत्रियों ने किया, जिसके कारण परशुराम ने उनको 21 बार ऐसे मार डाला। ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। फिर सुखदेव गोस्वामी ने अब इसका कारण बताना प्रारंभ किया। वो कहने लगे कि क्षत्रियों में से जो सबसे शक्तिशाली थे हय वंश के, जिनका नाम था कार्तवीर अर्जुन, अर्जुन भी नाम था और कार्तवीर, तो कार्तवीर अर्जुन ये नाम था उनका, और भगवान दत्तात्रेय की उपासना करके, उनकी कृपा प्राप्त करके, उनसे वरदान क्या मिला था कि 1000 भुजाएं उनको मिली थी, और उस उन 1000 भुजाओं के कारण वो प्राय अजित हो गया था, कोई ऐसा नहीं था जो उसका सामना कर सके, और इतना ऐश्वर्य, इतना इंद्रिय बल, इतना सौंदर्य, इतना प्रभाव, इतनी शक्ति, इतना यश, इतनी योग सिद्धियां उनको प्राप्त हो गई कि वो बस यहां वहां घूमता रहा सारे ब्रह्मांड में बिना कोई रुकावट के, जैसे हवा बहती है सब जगह बिना रुकावट के, तो ये राजा कार्तवीर अर्जुन भी ऐसे घूमने लगा। बहुत घमंडी हो गया था। किनके कृपा से? दत्तात्रेय। तो दत्तात्रेय ये भी और एक अवतार हैं भगवान के। जैसे पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे, भगवान के अनगिनत अवतार हैं अलग अलग तत्वों में, कोई है स्वांश, कोई है विभिन्नांश। विभिन्नांश अर्थात जो जीवात्माएं हैं, और स्व अंश स्वांश जैसे विष्णु तत्व अवतार हैं, तो उनमें से एक है दत्तात्रेय। श्रीमद् भागवत में भी चौथे स्कंद में और अन्य स्थानों में भी दत्तात्रेय भगवान का उल्लेख आता है। वैसे अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनसूया के ये पुत्र थे, तो इसलिए अत्रि से आए अत्रेय, अत्रेय अत्रि के पुत्र, और नाम था दत्त, इसलिए इन दो शब्दों को जोड़ के नाम हो गया दत्तात्रेय। तो वैसे उनका उल्लेख अनेक जगह होता है। ऐसे भी बताया जाता है कभी कभी कि वो संयुक्त अवतार हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के। वैसे अत्रि और अनुसूया के 3 पुत्र हुए, एक थे सोमदेव या चंद्रदेव के अंश, जो सोम जो कि ब्रह्मा जी के अंश रहे, दुर्वासा जो कि शिवजी के अंश हुए, और दत्तात्रेय जो कि भगवान विष्णु के अंश हुए। इस प्रकार से दत्तात्रेय के बारे में वर्णन है। श्रीमद् भागवत के पहले और दूसरे स्कंद में भी दत्तात्रेय का नाम लीला अवतारों में आता है। ये भी एक नित्य रूप है भगवान का, ऐसे श्रीमद् भागवत में कहा गया है। तो खैर, दत्तात्रेय भगवान की कृपा तो उन्होंने प्राप्त कर ली। कृपा तो क्या, एक दृष्टि से वो कृपा नहीं है, क्योंकि वास्तविक कृपा वही होती है जो कि हमें भौतिक सृष्टि से मुक्त होकर भगवान के चरण कमलों में स्थित करती है। तो ये इतना शक्तिशाली हो गया था कि कितनी की उसकी शक्ति थी, उसको समझाने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने एक घटना का वर्णन किया। तो एक बार हुआ ये कि ये राजा कार्तवीर अर्जुन नर्मदा नदी में स्नान कर रहा था, और घिरा हुआ था सुंदर स्त्रियों से, और वहां उसने अपने 1000 भुजाओं से नर्मदा नदी के जल के प्रवाह को रोक दिया, और इस तरह से रोक दिया कि पानी का प्रवाह जो है वो उल्टी दिशा में होने लगा। अब देखिए कितनी अद्भुत परिस्थिति है ये। नदी का प्रवाह स्वाभाविक रूप से एक दिशा में जा रहा है, और कोई उसे इस तरह से रोक ले कि प्रवाह दूसरी तरफ उल्टे तरफ चला जाए, तो ऐसे हो गया। तो ये नर्मदा नदी से ये संबंधित है ये स्थान, और आप परशुराम भी वहां पे आने वाले थे। ये लीलाएं बहुत सारी यहाँ पर हुई नर्मदा के तट पर। जैसा कि आप जानते हैं नर्मदा नदी ये बहुत पवित्र नदी है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये ऐसे नदियों में से हैं जो कि ऊपरी लोकों में बह के फिर पृथ्वी लोक में आती हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, कावेरी है, कृष्णा नदी है। तो ये नर्मदा नदी पावन मानी जाती है। आप में से जो अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं और आचमन का जल आदि बना तैयार करते हैं तो आप ये मंत्र बोलते होंगे अवश्य। कौन सा मंत्र? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधो कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। तो हम उस जल में इन सात पवित्र नदियों का आह्वान करते हैं, गंगा, फिर यमुना, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी। तो ये सात पवित्र नदियां हैं, और भी बहुत सारे नदियां हैं जो पवित्र हैं भारतवर्ष में, परंतु ये मुख्य मानी जाती हैं। तो ये नर्मदा नदी कोई साधारण नदी नहीं है, दिव्य है। इसके पीछे बहुत एक प्राचीन इतिहास है, और इसके दिव्यता के बारे में भी और कहीं और कभी हम श्रवण कर सकते हैं। ये इस नदी का प्रारंभ अमरकंटक नाम के स्थान से होता है, मध्य प्रदेश में जो है। जब हमारे यात्रा कमेटी हमसे मिल रही थी कि आज इस साल हम यात्रा के लिए कहाँ जाएंगे, हम्पी का नाम इसलिए आया कि यहाँ पास में है, परंतु मन में विचार आया कि अमरकंटक भी एक दिन एक बार कभी क्यों न जाया जाए, कि हम सब कभी गए नहीं है वहाँ पर। और अमरकंटक, अमर अर्थात शिव जी, कंटक उनका कंठ, तो शिव जी का कंठ। तो ये नर्मदा का उद्गम स्थान है। नर्मदा नदी यहाँ से बहना शुरू करती है पृथ्वी लोक के ऊपर, ऊपरी लोकों से आके यहाँ से प्रारंभ होती है पृथ्वी पर। तो बहुत तीर्थ स्थान नर्मदा के तट में हैं। ओमकारेश्वर है, और फिर महेश्वर है इत्यादि, ऐसे बहुत सारे कपिल तीर्थ है। फिर ये नदी बहते हुए फिर सागर में मिलती है गुजरात में भरूच नाम के स्थान में। तो ये एक ही नदी है नर्मदा, जहां पे लोग संपूर्ण नदी की परिक्रमा करते हैं। वैसे परिक्रमा हम करते हैं स्थानों की करते हैं, जैसे गोवर्धन पर्वतों की परिक्रमा, जैसे ब्रजभूमि में गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, चित्रकूट में वैसे ही एक कामतगिरी है तो वहाँ उस कामतगिरी की परिक्रमा करते हैं, या कभी ब्रजमंडल की परिक्रमा या वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। परंतु नदी की परिक्रमा, ये एक ही ऐसे नदी है नर्मदा नदी। तो अमरकंटक से कभी कभी शुरू करते हैं, तो कभी भरूच से शुरू करते हैं, परंतु जो भी हो पूरी परिक्रमा करनी है नर्मदा नदी को अपने दाहिने ओर रख के। जब भी हम परिक्रमा करते हैं तो जिनकी परिक्रमा है प्रदक्षिणा कर रहे हों उनको अपने दाहिने ओर रखना चाहिए, और भरूच से शुरू होके अमरकंटक होकर अमरकंटक से फिर भरूच की ओर आते हैं, या तो फिर अमरकंटक से शुरू करके वापस अमरकंटक तक लौट के आते हैं। परंतु नियम है कि नदी पार नहीं करना चाहिए, केवल जब भरूच में पहुंचते हैं तो समुद्र पार करके समुद्र में नौके पे बैठ के फिर वापस आते हैं, परंतु नदी पार नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से जो करते हैं कभी कभी पैदल करते हैं, 3 साल 3 महीने लग जाते हैं। हमारे पास तो 3 साल 3 महीने तो नहीं है करने के लिए, और नहीं हम परिक्रमा कर पाएंगे, परंतु यदि कभी हमारी मंदिर से यात्रा निकली वहाँ पर तो फिर नर्मदा की महिमा का गान वहाँ पे किया जा सकता है, और वहाँ जितने भी अच्छे अच्छे तीर्थ स्थान हैं बहुत, उनका दर्शन किया जा सकता है। तो खैर, तो नर्मदा नदी का उल्लेख अनेक पुराणों में है, महाभारत में है, रामायण में है, भागवतम में तो है ही। तो यहाँ पर ये कार्तिवीर अर्जुन अपने कार्य कर रहे थे, नर्मदा नदी के प्रवाह को रोक दिया, उल्टी दिशा में नर्मदा नदी के जल को भेज दिया। अब उधर माहिष्मतिपुरी नाम का एक स्थान था नर्मदा नदी के तट पे। अब ये माहिष्मतिपुरी ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, ऐतिहासिक स्थान, उज्जैन के दक्षिण भाग में। ऐसे बताया जाता है कि अवंती उज्जैन और माहिष्मतिपुरी ये दो बहुत महत्वपूर्ण राजधानियां थीं। उज्जैन या अवंती विंध्या पर्वत के उत्तरी भाग में, माहिष्मतिपुरी दक्षिण भाग में। तो माहिष्मतिपुरी ये आज कोई ऐसे विद्वान कहते हैं ये ओमकारेश्वर है या मनधाता, कोई कहते हैं ये महेश्वर है, दोनों अलग अलग स्थान है। खैर जो भी हो, परंतु ये माहिष्मतिपुरी जो है ये कार्तिवीर अर्जुन की राजधानी भी थी। तो जब ये कार्तिवीर अर्जुन वहां पर आए थे, नीचे नर्मदा में स्नान कर रहा था ये, और पानी के प्रवाह को उल्टा रख कर दिया, तो उस समय माहिष्मतिपुरी के पास में कौन आए थे स्नान करने के लिए? रावण, वही रावण, लंका का रावण वहां स्नान करने के लिए आ गया था और वो स्नान कर रहा था। तो जब वो रावण वहां स्नान कर रहा था तो उसने देखा कि रावण का जो कि जितने भी साथ में लोग आए थे उन्होंने अपने तंबू आदि सब नर्मदा के तट पे बनाए हुए थे। अभी जब उल्टी दशा में नर्मदा के नदी का जल आने लगा तो बाढ़ हो गया और तट में जितने भी सारे तंबू वगैरह लगाए हुए थे वो सब पानी के अंदर चले गए और वहाँ तो पूरा तहस नहस हो गया रावण के स्थान में। तो रावण को बड़ा गुस्सा आया। रावण तो अपने आप को बहुत बड़ा शूरवीर मानता था, उसको इतना गुस्सा आ गया कि ये किसने कर दिया। तो जाके देखा तो कार्तिवीर अर्जुन को देखा तो कार्तिवीर अर्जुन ने इतने आसानी से रावण को पकड़ लिया और हरा दिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे कोई शक्तिशाली व्यक्ति आसानी से एक बंदर को पकड़ लेता है और फिर छोड़ भी देता है, वैसे ही कार्तिवीर अर्जुन ने रावण जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को पकड़ लिया और उसको बंदी बना लिया, तो उसको गिरफ्तार कर लिया, बाद में छोड़ लिया, फिर दोस्ती भी कर ली रावण ने कार्तिवीर अर्जुन से। जैसे रावण को और किसने हराया था? वाली ने किष्किंधा में, बल्कि किष्किंधा के किसी दूसरे स्थान में जब वो गए थे अपना संध्या वंदन करने के लिए, वाली उड़ के जाते थे पृथ्वी के चारों कोनों में, वहां चारों समुद्रों के तट पे बैठ के अपनी संध्या वंदन करते थे। तो उस समय रावण भी पीछे से आया था, तो वाली को पता चला कि आ रहे हैं, तो कोई विचलित नहीं हुए, आए तो ऐसे अपने गोदी में पकड़ लिया। तो रावण इतना शक्तिशाली था, परंतु रावण से भी शक्तिशाली ऐसे व्यक्ति थे जैसे वाली और कार्तिवीर अर्जुन। तो इतना शक्तिशाली था ये राजा। तो इस प्रकार से कार्तिवीर अर्जुन जब एक बार इधर उधर भ्रमण कर रहा था अपने सैनिकों को साथ में लेकर, तो एक शिकार करते करते एक आश्रम तक पहुंच गए। उस आश्रम में कौन रहते थे? जमदग्नि ऋषि। अब वैसे इस राजा का कोई काम नहीं था जमदग्नि ऋषि के आश्रम में जाने के लिए। वैसे राजाओं को सम्मान देना चाहिए उन ऋषि मुनियों को जो कि अपने अपने आश्रमों में तपस्या कर रहे होते हैं। देखिए प्राचीन काल में जो अलग अलग तरह के वन हुआ करते थे, कोई ऐसे वन थे जो शिकार के लिए थे, कोई ऐसे वन थे जो गांव के लोगों के लिए उनके जीविका के लिए थे, जैसे फल फूल आदि कंद मूल सब मिलते थे। कई ऐसे वन थे जिनको तपोवन कहा जाता था। तो ऐसे तपोवनों में केवल साधु पुरुष जाते थे तपस्या करने के लिए, तो क्षत्रिय लोग वहां आ भी जाते थे तो कोई उपद्रव नहीं मचाते थे, वहां पर शांति से जाते थे। और आश्रमों में जाना भी था होता तो बड़े विनीत भाव से जाते थे, विनम्रता से उनके सामने जाके उनकी कृपा प्राप्त करके आशीर्वाद प्राप्त करके जाते थे। परंतु यह कार्तिकवीर अर्जुन बहुत घमंडी हो गया था इतनी शक्ति और ऐश्वर्य प्राप्त करने के कारण। तो वो जब वहां पहुंचा तो जमदग्नि ऋषि तो एक ब्राह्मण थे, उन्होंने स्वागत किया न केवल कार्तिकवीर अर्जुन का, परंतु उनके जितने भी साथ में हजारों की संख्या में सैनिक थे उनका भी स्वागत कर दिया। और उनके साथ साथ उन्होंने जितने भी सैनिक थे उन सबको ऐसी दावत खिला दी कि राजा कार्तिकवीर अर्जुन जो है आश्चर्यचकित हो गया। और यह संभव क्यों हुआ? क्योंकि जमदग्नि ऋषि के पास एक कामधेनु गाय थी। ये कामधेनु गाय एक ऐसी सुरभि गाय होती है जो कि असीमित मात्रा में दूध दे सकती है। और ऐसे जो गाय हैं वो साधारण व्यक्तियों के पास नहीं हो सकती हैं, केवल जमदग्नि जैसे ऋषियों के साथ हो सकती थी। क्योंकि अन्य लोग यदि ऐसे कामधेनु गाय को पाएं तो वो दुरुपयोग करेंगे। तो ये कामधेनु गाय ये जमदग्नि ऋषि के आश्रम में थी। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बतलाते हैं कि ऐसे ही आध्यात्मिक कामधेनु गाय असंख्य मात्रा में गोलोक वृंदावन में रहती हैं। सुरभीर अभिपालयंतम, भगवान कृष्ण ऐसे अनेक सुरभि गायों का पालन करते हैं गोलोक वृंदावन में भी। तो भगवान कृष्ण के लिए गाय बहुत प्रिय होते हैं, उनके पास असंख्य ऐसे सुरभि गाय होती हैं। जमदग्नि ऋषि के पास केवल एक गाय ऐसी थी और वो एक गाय भी ऐसे चमत्कार कर सकती थी। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि गोलोक वृंदावन में रहने वाले गाय किस प्रकार के चमत्कार कर सकती हैं और वहां कितना ऐश्वर्य होगा। तो खैर प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में कहते हैं कि जमदग्नि ऋषि की तरह हमारी योग्यता नहीं है कि हमारे पास कोई कामधेनु गाय आ जाए, परंतु हमें भी गायों की रक्षा करनी चाहिए। ये जानकर ये भगवान कृष्ण के लिए बहुत प्रिय हैं, और गायों को जब हम बहुत प्रसन्न रखेंगे तो फिर वो प्रचुर मात्रा में दूध देंगी। भले वो जमदग्नि ऋषि के पास होने वाले कामधेनु गाय की तरह नहीं देंगी, फिर भी हमारे आवश्यकता से अधिक देंगी वो दूध। तो जो अच्छी तरह से गायों का देखभाल करेंगे और जो फिर खेती करेंगे आराम से, ऐसे कृषि और गोरक्षा से मनुष्य समाज की सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती हैं। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम। तो जो वैश्य वृत्ति के लोग हैं उनके लिए आदेश है शास्त्रों का कि वो इस प्रकार से खेती करें, गायों की रक्षा करें और मनुष्य समाज फिर समृद्ध हो जाएगा। तो खैर जब कार्तिकवीर अर्जुन ने देखा इतना ऐश्वर्य एक ब्राह्मण के पास, एक ऋषि के पास जो कि जंगल के भीतर किसी आश्रम में रह रहे हैं, तो दुष्ट होने के कारण या घमंडी होने के कारण उनके हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई कि ये तो जो गाय है ये मेरे पास होनी चाहिए थी, इनके पास क्यों है। और इसी प्रकार से और एक घटना हुई थी। कौन सी घटना थी? वो विश्वामित्र राजा, जब वो मुनि नहीं बने थे राजा बने, राजा थे उस समय, वो किन के आश्रम में गए थे? वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाके उन्होंने उनके कामधेनु गाय को देखा जिनका नाम था नंदिनी। और उनके मन में भी ईर्ष्या उत्पन्न हो गई कि अरे मैं तो राजा हूं, ये ऋषि के पास ऐसे गाय होकर क्या लाभ, ये तो मुझे चाहिए। फिर उन्होंने ले लिया, छीन ली, जबरदस्ती छीनने का प्रयास किया। उस समय अपने ब्रह्म तेज का प्रयोग करके वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र मुनि के संपूर्ण सेना को परास्त कर दिया। तब जाकर विश्वामित्र मुनि के मन में इतना ठोस पहुंच गया कि उन्होंने सोचा कि धिक्कार हो क्षत्रिय बनने के लिए, अब मुझे क्षत्रिय नहीं बनना है, मुझे अब ब्राह्मण बनना है। फिर वो ऋषि बने, संतुष्ट नहीं हुए, और तपस्या की, फिर महर्षि बने, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, फिर ब्रह्म ऋषि बने, वशिष्ठ मुनि के बराबर के बने, तब संतुष्ट हो गए। परंतु कार्तिकवीर अर्जुन ने इस प्रकार की ईर्ष्या की और इशारा किया अपने सैनिकों को कि वो गाय को ले लो। उस समय जमदग्नि ऋषि ने कोई वैसे अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करके प्रहार नहीं किया, तो वो चुप बैठे रहे, दुखी हो गए परंतु दुख बैठे रहे ऐसे ही। और उस समय कार्तिकवीर अर्जुन के सैनिकों ने उस गाय को जबरदस्ती बलपूर्वक अपहरण कर लिया और वापस ले गए, और ले जाके फिर अपने स्थान में माहिष्मतिपुरी ने में रख लिया। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि कार्तिकवीर अर्जुन ने सोचा कि ये ऋषि जो हैं जमदग्नि, ये मुझसे ज्यादा ऐश्वर्यवान और शक्तिशाली हो गए, क्योंकि उनके पास ये कामधेनु गाय के रूप में एक रत्न है, तो ये रत्न मुझे चाहिए। और इसलिए एक अतिथि को चाहिए कि जब वो किसी घर में जाए और उनका सत्कार अच्छी तरह से हो तो वो थोड़ा आभार व्यक्त करें, धन्यवाद दे उनको। परंतु कार्तिकवीर अर्जुन का सम्मान इतने अच्छे ढंग से हुआ, फिर भी उन्होंने ऋषि जमदग्नि के प्रति कोई सम्मान का भाव प्रकट नहीं किया, बल्कि ऐसे बलपूर्वक इस कामधेनु गाय को छीन लिया उन्होंने। और इस प्रकार से रोती हुई वो गाय अपने बछड़े के साथ चली गई माहिष्मतिपुरी। और आगे चल के क्या होना था, क्या विध्वंस होना था, उस कार्तिकवीर राजा ने कल्पना भी नहीं की थी। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि अब जब परशुराम जी जो उस समय आश्रम में नहीं थे, आश्रम में लौट के आए और उनको खबर मिली कि क्या हुआ था, किस प्रकार से कार्तिकवीर अर्जुन ने अपहरण कर दिया था इस कामधेनु गाय और उसकी बछड़ी का, तो उस समय परशुराम जी ने क्या किया, यदि आपको जानना है तो अगले रविवार ठीक इसी समय आपको यहाँ राधा गोकुलानंद मंदिर में आना होगा। श्री परशुराम भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है विषय से संबंधित? हाँ पीछे एक मिनट, इसमें बोलिए।
हरे कृष्णा महाराज, रूपत के तत्पर में लास्ट पर में आया है
ऐसे
प्रभु जी के तत्पर लास्ट पर में कि 21 बार उसका थोड़ा विश्लेषण जानना चाहते हैं।
ये यदि जानना है आपको तो अगली बार आना चाहिए।
हरे कृष्णा।
तो इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा।
हरे कृष्णा।
ठीक है। हरे कृष्णा
महाराज, ये गादी ये भी सुमोष के थे।
कौन? गादी।
गादी
हाँ।
उनकी पुत्री ने का लड़का जमदग्नि हो गया।
हाँ।
तो उसी वक्त ये कार्तिकवीर अर्जुन थे?
नहीं, कार्तिकवीर अर्जुन दूसरे थे, ये इनके वंश में नहीं आए।
नहीं, वंश नहीं है। हाँ। वो समकालीन थे।
हाँ, हाँ,
हाँ,
समकालीन थे। हाँ।
कार्तिकवीर अर्जुन और
परशुराम
जमदग्नि। तो ये कार्तिकवीर अर्जुन आप कहते हैं है वंश के हैं।
हाँ।
तो एक्चुअली वो भी सोमवंश के हैं।
हाँ।
तो फिर गादी के बाद में उनका लड़का तो ये आ गया अपना।
लेकिन देखिए, हर एक जो हम सोमवंश की बात करते हैं ना, तो उसमें वंशावलियां तो हजारों है ना, ऐसे नहीं है कि वंशावली एक, जैसे चंद्र वंश में केवल एक ही वंश चलता आएगा, क्योंकि जितने सारे राजा हुए, पुत्र पुत्रियां हुई, उनके कितने सारे और संतान हुए, उनके और संतान हुए, ऐसे जितने साल बीतते गए तो वंशावलियां तो बहुत सारी हो गई। तो चंद्र वंश में भी बहुत सारी वंशावलियां हैं, वंशावलियां हैं, और सूर्य वंश में भी है।
सत्यवती के उनकी माँ की, उनका लड़का वो क्या हो गया उनका भी, जैसे यहाँ पे जमदग्नि।
हाँ, तो प्रश्न ये है कि जो दो आहुति की कटोरी दी थी ना, एक उल्टा हो गया, दोनों ने एक दूसरे परस्पर कर लिया, तो सत्यवती की माँ ने जो कटोरी के अंदर जो आहुति थी वो ग्रहण कर ली, तो उनका संतान कैसे हुआ, ब्राह्मण हो गया। उनके भी कई संतान हुए होंगे, उनमें से एक विश्वामित्र भी थे पहले से, और एक संतान हुए होंगे जो ब्राह्मण निकले गुण से। तो व्यक्ति को ब्राह्मण क्षत्रिय आदि कहा जाता है केवल जन्म से नहीं, गुण से, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
जैसे परशुराम जी ने बहुत दुष्टों का विनाश किया है, तो रावण का सामना भी हुआ था उनके से, रावण का भी सामना हुआ था क्या परशुराम जी
का? रावण का सामना भी हुआ था क्या? वैसे परशुराम ने रावण का वध नहीं किया, वो श्री राम के लिए छोड़ दिया। राम की महिमा, राम आने वाले थे रावण का वध करने के लिए, है ना, इसलिए पहले ही कार्तिकेय अर्जुन को मार डाला। राम तो बाद में आने वाले थे, बहुत बाद में, उस समय रावण इतना शक्तिशाली नहीं था। तो इसलिए क्षत्रिय इधर उधर सब भाग गए थे। इसके बारे में अगले रविवार को हम देखेंगे, ठीक है।
हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। हाँ
महाराज, दत्तात्रेय जी का जो अवतार है वो किस कारण हुआ था, और इस भागवत में इतना डिटेल में वर्णन नहीं आता दत्तात्रेय जी का, कहाँ पर वर्णन आता है?
हाँ, दत्तात्रेय के बारे में अधिक वर्णन श्रीमद् भागवत में नहीं है, केवल उनका जन्म कैसे हुआ इतना वर्णन है कि अत्रि मुनि और अनुसूया से वो उत्पन्न हुए, तीन भाई। और एक वर्णन जो ब्रह्मांड पुराण में है कि अनुसूया देवी ने भगवान से प्रार्थना की कि आप तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश एक मेरे पुत्र के रूप में आ जाइए, तो संयुक्त अवतार हो गए उनके। ये ब्रह्मांड पुराण का वर्णन है। और श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि तीन पुत्र हुए, जैसे मैंने पहले कहा, सोम, दुर्वासा और दत्तात्रेय। तो सोम ब्रह्मा जी के अंशावतार, दुर्वासा मुनि शिव जी के अंशावतार, और दत्तात्रेय विष्णु भगवान के अवतार। परंतु और एक उल्लेख आता है दत्तात्रेय का, वो श्लोक में नहीं है परंतु श्रीधर स्वामी के टीका में है। उद्धव गीता में 11वें स्कंद में हम देखते हैं कि महाराज यदु एक ब्राह्मण से मिले, एक अवधूत ब्राह्मण से मिले, और उस अवधूत ब्राह्मण ने महाराज यदु को अपने 24 गुरुओं के बारे में बताया, जैसे पृथ्वी है, समुद्र है, हवा है, ये सब मेरे गुरुजन हैं, उनसे मैंने बहुत चीजें सीखी हैं। तो श्रीधर स्वामी ने बतलाया है, और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इसकी पुष्टि करते हैं कि ये जो अवधूत ब्राह्मण थे जिन्होंने कि महाराज यदु को उपदेश दिया, वो वास्तव में दत्तात्रेय भगवान थे। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि दत्तात्रेय इन्होंने ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, जैसे कि अन्य ऐसे अवतार हुए, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का प्रचार किया, कभी कभी उन्होंने निराकार ज्ञान भी प्रचार किया, निराकार ब्रह्म का ज्ञान भी प्रचार किया। तो इसलिए हम दत्तात्रेय भगवान को मानते अवश्य हैं, परंतु हमारे संप्रदाय में उनकी उपासना इतनी ऐसी नहीं होती है, जैसे बुद्ध देव को भी मानते हैं परंतु इतना महत्व इतना नहीं देते हमारे संप्रदाय में। ठीक है। हाँ, और एक
नर्मदा नदी के किनारे पर ही,
हाँ, जबलपुर के पास में अमरकंटक है नर्मदा के तट पर, हाँ, हाँ, महिष्मतिपुर भी वहीं पे पास में है, बिल्कुल। तो ठीक है, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री देवशायनी एकादशी की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम आज के सुंदर कृष्ण कथा के लिए हम परम पूज्य भक्ति रसाम महाराज जी का धन्यवाद देना चाहते हैं और इनका आभार प्रदर्शन करना चाहते हैं, तीन बार हरि बोल बोल के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, धन्यवाद। साथ ही साथ जो भक्त पहली बार यहाँ पे मंदिर में आए हैं उनसे विनती करते हैं प्रभु जी माता जी को कि कृपया कुछ देर करें अपने जगह पे खड़े हो जाइए, और आपका भी हमको यहाँ पे धन्यवाद देना चाहते हैं जो पहली बार भक्त आए हैं। बहुत सारे भक्त आज के पावन दिन पे आप आए हैं, तो हम सभी जो नियमित भक्त आते हैं उनसे विनती करते हैं, इनका भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं जोर से हरि बोल बोल के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बैठ जाइए। तो यहाँ पे मैत्राणी प्रभु और राधा भक्ति माता जी है, तो कृपया खड़े हो जाइए। मैत्राणी प्रभु राधा भक्ति माता जी, तो ये जो भक्त हैं, जो नए भक्त आए हैं उनसे विनती करते हैं कि नीचे में जो ग्लास हाउस है रिसेप्शन के सामने, तो वहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा जानकारी भी देंगे और उपहार भी देंगे, तो आप जैसे ही कीर्तन के बाद या प्रसाद से पहले वहाँ पे आपको ग्लास हाउस में आपको उनको मिलना है। और आशा करते हैं कि आज आषाढ़ी जो एकादशी है उनका पावन दिवस है, तो सबने एकादशी का व्रत का पालन किया होगा, और आज दोपहर का प्रवचन होने के कारण जो हर एकादशी को शाम को प्रवचन होता है वो नहीं होगा, तो यहाँ पे भजन और कीर्तन होता रहेगा। तो और साथ ही साथ आज के इस पावन अवसर पर जो छोटे बच्चों के लिए तिंडी यात्रा का आयोजन किया है शरयू माता जी और बाकी माताजियों ने, तो जो छोटे बाल गोपाल है उनको विनती है कि ठीक 4:30 बजे जो वड़गांव में रामदेव गली में राम मंदिर है वहाँ पे उपस्थित होना है सब भक्तों को जिनको वहाँ पे सम्मिलित होना है। और उनको विनती है कि जो वैष्णव यानी कि वारकरी जो अपना पेराव है धोतर और कुर्ता, और माता जी जो छोटी बच्चे हैं वो साड़ी में अगर हो सके तो उनको वहाँ पे उपस्थित होना है, और ये दिंडी कार्यक्रम में आप सहभागी हो सकते हैं। और बाकी के जो भी भक्त भी हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए भी उनसे विनती है कि वहाँ पे आप एकत्रित आ सकते हैं। तो ठीक 4:30 बजे वहाँ से दिंडी यात्रा की शुरुआत होगी, तो उससे पहले आपको वहाँ पे पहुँचना है वड़गांव रामदेव गली राम मंदिर। और अभी जो बुधवार को गुरु पूर्णिमा है उस दिन से चातुर्मास की शुरुआत हो रही है, तो चातुर्मास में जैसे आप जानते हैं कि 1 महीने के लिए जो हरी पत्तियों की सब्जियाँ हैं वो वर्ज्य है, तो उनको नहीं खाना है। तो आगे के जो 3 बाद में चातुर्मास में अलग अलग महीने में अलग अलग जो चीज़ें नहीं खाई जाती है, तो इस प्रकार से पहले महीने में जो ग्रीन सब्जियाँ यानी कि हरी पत्तियाँ है सब्जी उसको वर्ज है। और एक यात्रा जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल मंदिर की ओर से यात्रा निकलती है, जैसे जानते हैं धामवास एक महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का 5 अंगों में से, तो इसी तरह इस साल भी हम परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज जी की अध्यक्षता में यहाँ पे हम्पी के लिए यात्रा जा रही है, तो 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक की यात्रा है 5 दिन की, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन करने का जो आखिरी दिन है वो है 31 जुलाई यानी इस महीने के 31 तारीख तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सब भक्तों से विनती है कि बड़ी संख्या में जो भी सत्संग मंडल सेवक है सदस्य है जो 4 नियमों का पालन करते हैं, तो उनसे विनती है कि बड़ी संख्या में इसमें उपस्थित रह के इसका जरूर लाभ लीजिए। और साथ ही साथ आखिरी वक्त में जाके वहाँ पे आशा करते हैं कि भीड़ ना करें, तो अभी बहुत दिन है 10-20 दिन है, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसका लाभ लीजिए। बाहर से भी सेंटरों से बहुत सारे भक्तों ने रजिस्ट्रेशन किया है, और आपको गूगल पे एक फॉर्म है तो आप ऑनलाइन भी बुकिंग करा सकते हैं, गूगल फॉर्म भर के
उस पर भी ऑनलाइन करा सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए कि आप मदन गोविंद प्रभु, शंकरशन प्रभु और गोपाल चंद प्रभु से संपर्क कीजिए, और नीचे में जो काउंटर है वहाँ पे भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जो भक्ति शास्त्री के लिए नया बैच शुरू होने वाला है, तो जो भक्त इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं नए क्लास के लिए, उनका अपना नाम है वो नीचे रिसेप्शन काउंटर में दे सकते हैं। और आज का जो प्रसाद है वो पुरस्कृत किया है सुरेश भास्करी प्रभु और उनके परिवार की ओर से, तो कृपया आए हैं तो आगे आइए, मंदिर की ओर से छोटी भेंट हम देना चाहेंगे। तो प्रवीण भास्करी और उनकी शादी के अवसर पर उन्होंने इस पुरस्कृत किया है, तो हम उनको बधाई देते हैं इसके लिए। हरी बोल, धन्यवाद आपका। तो और साथ ही साथ और एक प्रभु जी ने गुप्त दान दिया है, और साथ ही साथ ऐश्वर्या राय शेट्टी माता जी ने भी आज उनके जन्मदिन के अवसर पर जो पूरा प्रसाद पुरस्कृत किया है, वह अगर आए हैं तो कृपया वो भी आगे आइए। आपको भी जन्मदिन की शुभकामना है। तो हम साथ ही साथ राधा गोकुलान गौ नेता जगन्नाथ बल्लभ स्वामी जी भी विनती करते हैं उपस्थित वैष्णवों से कि इनके जन्मदिन के अवसर पर उनके ऊपर कृपा बरसाए। धन्यवाद, हरी बोल। और अगले जो रविवार है वो सेवा जो करने की सेवा तो चीज प्रकार से है, जो सत्संग मंडल है यशोमती नंदन सत्संग मंडल जिसके सेवक है रामदास, मदन मोहन सत्संग मंडल जिनके सेवक है गोपाल चंद्र प्रभु, नंद गोतन रखवाला सत्संग मंडल जिसके सेवक है वासुदेव कृष्ण प्रभु, गोकुलेश्वरी सत्संग मंडल जिनकी सेविका है राधा भक्ति माता जी। तो सब सत्संग मेलों के सेवकों को सदस्यों को विनती है कि आपको सही समय पर आके आपकी सेवा करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे उत्सव आते हैं वो है जगन्नाथ रथ यात्रा जो अभी राधा कृष्ण हम महोत्सव मनाया, और साथ ही साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो बड़े जोर शोर से मनाते हैं, लेकिन 2 सालों से कोरोना के कारण इतनी बड़ी मात्रा में हम नहीं मना पाए। तो इस साल सभी भक्तों का इसी राय थी कि जो जन्माष्टमी है तो बड़ी जोरों से मनाना है, तो इसके लिए तैयारी भी बड़ी जोरों से करनी पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि सभी जो भक्त, क्योंकि रथ यात्रा के वक्त पे बहुत भक्तों ने हमको संपर्क किया था कि उनको सेवा करने की इतनी इच्छा थी लेकिन कोरोना के कारण हम उनको बोल रहे थे नहीं इतनी बड़ी मात्रा में नहीं करनी है, बहुत रेस्ट्रिक्शन है और कोरोना फैलाने की भी संभावना है इसके लिए। तो अभी आप जोर शोर से जितनी सेवा करना चाहते कर सकते हैं। तो इसी जन्माष्टमी से जो शुरुआत हो रही है वो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन जैसे कि हर साल होती है, जो स्कूल के बच्चे होते हैं तो उनके लिए जन्माष्टमी के अवसर पर अलग अलग 6 प्रकार के यहाँ पे स्पर्धाएं ली जाती हैं। तो वो 6 अगस्त से शुरू होगी। तो हर साल जिस प्रकार से यहाँ पे भक्त इसमें सम्मिलित होते हैं सेवा करने के लिए, और अभी 2-3 दिन में ही जो कंपटीशन के उनके पत्रक है वो देना है हर स्कूल में जाके, तो सब भक्तों से विनती करते हैं कि जो हर साल करते हैं और साथ ही साथ जो भी सेवा करना चाहते हैं स्कूल में जाके ये पत्रक देने के लिए, वो नागराज प्रभु से संपर्क करना है आपको, और 2 दिन में या 3 दिन में ये सब देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है क्योंकि समय बहुत कम है। आशा करते हैं कि सभी जो भक्त हैं इसमें सेवा में सम्मिलित होंगे, और ज़्यादा करके हम विनती करके हर एक जो सत्संग मंडल है उसमें 2 या 3 भक्त अगर हमको आपके आसपास के कुछ स्कूलों में देना चाहेंगे तो सेवा जल्दी समाप्त हो जाएगी। आशा करते हैं कि इसमें आप सहयोग जरूर करें। साथ ही साथ जन्माष्टमी के लिए भी जो इष्ट गोष्ठी है आज एक्चुअली हमने करना था, लेकिन बहुत से जो भक्त हैं हमारे वो पंढरपुर गए हैं और किसी कारण पे नहीं आ गए, तो अगले रविवार को कीर्तन से पहले इष्ट गोष्ठी होगी जिसमें आप सबको भी हम विनती करते कि उस पर इकट्ठा आपको आना है, और साथ ही साथ जो भक्त नहीं आए हैं उनको भी आमंत्रित करना है। और अलग अलग प्रकार की सेवा हर साल आप करते हैं वो सेवा तो आपको पता ही है, आशा करते हैं कि इसकी भी तैयारी करेंगे। और इस प्रोग्राम को बड़े पैमाने पे मनाने के लिए हमको जो लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ती है, इसका 2 हमारे मकसद है, एक खुद को सेवा में लगना और दूसरों को भी लगाना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम देखते हैं कि हम कलेक्शन के लिए जाते हैं तो उतना ज़्यादा लोग मंदिर में आ पाते हैं, तो हमारा एक महत्वपूर्ण जो संस्था का उद्देश्य है कि लोगों को सेवा में लगाना या मंदिर तक लाना, तो इसके उद्देश्य के प्रति हमको, अगर उनके पास जाते हैं उनको सेवा भी, लक्ष्मी सेवा भी हमको मिलती है और हम खुद भी सेवा में लग जाते हैं, तो सबसे विनती है इस सेवा में भी आपको बड़ी उत्साह से लगना है। और बारिश हम देख रहे हैं कि लगातार हो रही है, तो जब भी आपको अभी समय ज़्यादा है तो जब भी बारिश कम होती है जैसे आपकी सुविधा अनुसार आप कलेक्शन के लिए जा सकते हैं। और जो कलेक्शन की ये पैम्फलेट्स है, रिसीट पुस्तक है, वहाँ पे बालकृष्ण भट्टत प्रभु है या नीचे में नागराज प्रभु है और सत्संग मंडल के जो सेवक है उनसे विनती है, आज ही आप उनको, आपसे उनसे पाइए और आपकी सुविधा अनुसार आप कलेक्शन कर सकते हैं। और कलेक्शन के लिए हम देखते हैं कि जो हमारे भक्त है वो रथ यात्रा और जन्माष्टमी के अवसर पर खुद अपना भी तन मन धन से भी सेवा करते हैं, तो अगले रविवार को हमारे यहाँ इष्ट गोष्ठी है, तो आपने ओर से कुछ यानी कि वस्तु के रूप में या लक्ष्मी सेवा के रूप में या अभिषेक के लिए कुछ आप सेवा करना चाहते हैं तो आपने नाम अपने आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं, जो कमेटी के सदस्य हैं उत्सव कमेटी के बालकृष्ण भट्टत प्रभु या अन्य जो भक्त हैं उनसे संपर्क करके आपने जो सेवा करना चाहते हैं उसके लिए आप आगाहों में उसके लिए माहिती दे सकते हैं। तो इसके बाद अभी कीर्तन है और कीर्तन के बाद सबके लिए महाप्रसाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण